ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। प्रधानमंत्री आज विभिन्न सरकारी विभागों में और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं नौकरशाही, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।
आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं।
जम्मू कश्मीर में कल रात नियंत्रण रेखा के पास कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। अकारण किए गए इस उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। घटना में भारत की ओर से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सेना स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए घाटी में तलाशी अभियान चला रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस आतंकी हमले की जांच कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। परिषद के सदस्यों ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है और इसके सभी रूपों का मुकाबला किया जाना चाहिए। परिषद ने पहलगाम हमले के अपराधियों, समर्थकों और प्रायोजकों को सजा दिलाने का आह्वान किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्वीकार किया है कि देश ने 3 दशक तक आतंकवादी समूहों का समर्थन किया है। ब्रिटिश समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में जब उनसे इस्लामाबाद के आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित करने और उनका समर्थन करने के इतिहास के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों की ओर से घृणित कार्य में शामिल था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की यह स्वीकारोक्ति जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आई है। जर्मनी के बर्लिन में भारतीय दूतावास ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कल आयोजित इस कार्यक्रम में जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा के लिए जम्मू के रियासी जिले के कटरा में स्थित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र अगले महीने के पहले सप्ताह से सक्रिय हो जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल इस संबंध में एक संयुक्त समीक्षा बैठक की। केवल अधिकृत पिट्ठू और खच्चर वालों को ही अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पोप का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया समाज के प्रति उनकी सेवा को हमेशा याद रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रोम पहुंची और वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्रालय ने कहा कि पोप फ्रांसिस के सम्मान में आज भारत में राजकीय शोक रहेगा और सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज छुका रहेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने निजी ठेकेदारों और रेलवे अधिकारियों के बीच सांठगांठ का भंडाफोड़ करते हुए रिश्वतखोरी के एक मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता सहित 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपी मुख्य अभियंता विभिन्न कार्य आदेशों को निष्पादित करने में निजी फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत लेने की भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त था। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। आकाशवाणी को मिले शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी को रेडियो का सीरीज ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टेबल टेनिस में भारत की दिया चेताले आज ट्यूनिशिया में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में 3 क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। महिला सिंगल्स में कल प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने भारत की ही मनिका बत्रा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।